नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद से लड़ाई में भारत पूरी मजबूती और पूरे विश्वास के साथ इसराइल के साथ खड़ा है। इसराइल की संसद नेसेट में किसी भारतीय प्रधानमंत्री के पहले भाषण में श्री मोदी ने इसराइल के साथ एकजुटता का मजबूत संदेश दिया। श्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद शांति के लिए खतरा है और कोई भी वजह आम लोगों की हत्या को सही नहीं ठहरा सकती।
नो कॉज कैन जस्टिफाई द मर्डर ऑफ सिविलियंस, नथिंग कैन जस्टिफाई टेररिज्म। इंडिया हैज ऑल्सो एंड्योर्ड द पेन ऑफ टेररिज्म फॉर अ लॉन्ग टाइम। लाइक यू, वी हैव कंसिस्टेंट एंड अनकॉम्प्रोमाइजिंग पॉलिसी ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म।
प्रधानमंत्री के भाषण पर इसराइली सांसदों ने कई अवसरों पर जोरदार तालियां बजाईं। श्री मोदी ने 7 अक्टूबर 2023 को हमास के भयानक आतंकी हमले में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति और परिवार के लिए भारत की तरफ से गहरी संवेदना प्रकट की। प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्वीकृत गजा शांति पहल को इस क्षेत्र में न्यायसंगत और टिकाऊ शांति का रास्ता बताया। उन्होंने कहा कि भारत ने इस पहल को पूरा समर्थन दिया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा, इसराइल नवाचार और प्रौद्योगिकी का शक्तिशाली केंद्र है, इसलिए भारत उसे स्वाभाविक साझेदार मानता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय निवेश संधि की, जिससे कारोबारियों का भरोसा बढ़ेगा। भारत और इसराइल के बीच मजबूत रणनीतिक संबंधों में असाधारण योगदान के लिए इसराइल की संसद नेसेट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किया है। प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के पहले ऐसे नेता हैं जिन्हें ये सम्मान मिला है। नेसेट अध्यक्ष अमीर ओहाना ने संसद में संबोधन के तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी को पदक प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में आभार प्रकट करते हुए कहा कि ये सम्मान किसी व्यक्ति विशेष को नहीं बल्कि भारत और इसराइल के बीच अटूट मित्रता को समर्पित है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत ने हमेशा टकराव के बजाय संवाद, विभाजन के बजाय सहमति और संकीर्ण हितों के बजाय मानव केंद्रित विकास को प्राथमिकता दी है। मानवाधिकार परिषद के उच्च स्तरीय सत्र में डॉक्टर जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि संघर्ष, ध्रुवीकरण और अनिश्चितता से घिरी दुनिया में भारत साझा आधार खोजने और उसे मजबूत करने का प्रयास करता है। उन्होंने आतंकवाद से निपटने के लिए मिलकर काम करने की अपील की। ईरान और अमेरिका के राजनयिक आज जिनेवा में तीसरे दौर की परमाणु वार्ता करेंगे। इससे पहले अमेरिका ने ईरान के तेल व्यापार और हथियार नेटवर्क पर नए प्रतिबंध लगा दिए। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजश्कियन ने बातचीत को दोनों देशों के बीच लंबे समय से जारी टकराव दूर करने की दिशा में महत्वपूर्ण मोड़ बताया। उन्होंने कहा कि बातचीत आयतुल्ला अली खामेनेई के मार्गदर्शन में आगे बढ़ रही है और इसका उद्देश्य वर्तमान स्थिति से आगे बढ़ना है। उन्होंने कहा कि मौजूदा स्थिति न युद्ध है और न शांति। दुनिया भर में कल तेल की कीमतें 7 महीने के उच्च स्तर पर रहीं। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव से बाजार पर असर पड़ा है। लंदन में ब्रेंट क्रूड वायदा लगभग $71 प्रति बैरल पर था। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट वायदा लगभग $65.8 प्रति बैरल पर था। पिछले महीने दोनों ग्लोबल बेंचमार्क लगभग 8% बढ़ गए। ईरान ओपेक में तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक है। होली के त्यौहार के दौरान सुरक्षित और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे ने विशेष व्यवस्था की है। यात्रियों की संख्या में संभावित वृद्धि को देखते हुए विशेष रेलगाड़ियां 18 मार्च तक 1,244 फेरे लगाएंगी। रेल मंत्रालय ने कहा है कि मांग बढ़ने पर और अधिक विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा सकती हैं। श्रीलंका की टीम आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप से बाहर हो गई है। कोलंबो में सुपर 8 के मैच में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 61 रन से हरा दिया। न्यूजीलैंड ने 169 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम 107 रन पर सिमट गई। कप्तान मिचेल सेंटनर ने सर्वाधिक 47 रन बनाए और एक विकेट भी लिया। अहमदाबाद में आज दोपहर 3 बजे वेस्टइंडीज का मैच दक्षिण अफ्रीका से और चेन्नई में शाम 7 बजे भारत का सामना जिम्बाब्वे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।